ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौरेल ने भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को सेना के मानार्थ महारथी का दर्जा किया प्रदान। जनता को सुशासन महसूस होने के हिसाब से काम करने का कर्मचारियों को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। सत्ता साझेदार प्रमुख दो दलों के बीच कोई विमति नहीं है, गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के खिलाफ जारी किया वारंट। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौरेल ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को मानार्थ महारथी को दर्जियानी चिन्ह तथा खड्ग प्रदान किया है। नेपाली सेना के परमाधिपति समेत रहे राष्ट्रपति पौरेल ने आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित विशेष समारोह के बीच उन्हें दर्जियानी चिन्ह प्रदान किया। समारोह में उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, रक्षा मंत्री मानवीर राय लगायत विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति थी। नेपाल भारत के बीच के सैनिक संबंध के निरंतरता स्वरूप सन 1950 से दोनों देश एक दूसरे के प्रधान सेनापति को मानार्थ महारथी का दर्जा प्रदान करने की परंपरा है। प्रधान सेनापति अशोक राज सिग्देल और नेपाल दौरे पर रहे भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष द्विवेदी के बीच दो देशों के सैनिकों के बीच पारस्परिक साझेदारी और हित पर केन्द्रित आज सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा में द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने महज बैठक विमर्श और प्रशासनिक उलझनों में ही न उलझकर जनता को महसूस होने के हिसाब से काम करने का संबंधित सभी को निर्देश किया। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय और माथहत के निकायों के चालू आर्थिक वर्ष के पहले चौमासे की प्रगति समीक्षा और मंत्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति की बैठक में प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्देश किया। बैठक में संबंधित निकायों के प्रस्तुतीकरण सुनने के बाद प्रधानमंत्री ओली ने काम करने के तौर तरीकों और मानसिकता में परिवर्तन करने का निर्देश किया। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आसन्न चिन्ह भ्रमण में नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले के साझा एजेंडे प्रस्तुत होंगे। नेपाल प्रेस यूनियन कैलाली द्वारा आज धनगढ़ी में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृहमंत्री लेखक ने ये बात कही। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश में राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और समृद्धि के पक्ष में ये सरकार गठित हुई है, उन्होंने कहा कि सत्ता साझेदार प्रमुख दो दलों के बीच फिलहाल किसी भी विषय को लेकर विमति नहीं है। संघीय, प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों के बीच अधिकारों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के तहत तीन प्रदेशों में सड़क संजाल सुधार के काम शुरू हुए हैं। शहरी विकास मंत्रालय के संयोजकत्व में अगले 5 साल में मध्येश, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश में करीब 16,64 करोड़ रुपए की लागत में सड़क संजाल सुधार के काम की शुरुआत की गई है। विश्व बैंक के ऋण सहयोग में शहरी विकास मंत्रालय अंतर्गत आज प्रादेशिक तथा स्थानीय सड़क सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, साथ ही समझदारी पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि कृषि विकास रणनीति में समयानुकूल परिमार्जन करने की जरूरत है। कृषि विकास रणनीति क्रियान्वयन समीक्षा और परिमार्जन के लिए आज काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में मंत्री अधिकारी ने ये बात कही। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सहित की उपलब्धियों की रक्षा के लिए गणतंत्र पक्षधर सभी को एक जगह खड़े होने की जरूरत है। माओवादी केंद्र गोरखा द्वारा आज आयोजित पार्टी के अगुवा नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड ने ये बात कही। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
तपाईँ एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले और चीनी कम्युनिष्ट पार्टी के नेताओं के बीच द्विपक्षीय भेंटवार्ता हुई है। चीन की राजधानी बेजिंग में कल हुई भेंट में नेताओं ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आसन्न चीन भ्रमण से दो देशों के बीच रहे आपसी संबंध और सहकार्य के और भी ऊंचाई पर पहुंचाने का विश्वास जताया। ये जानकारी भ्रमण दल में सहभागी एमाले प्रचार विभाग के सदस्य दीपक ग्यवाली ने दी। नेपाली कांग्रेस देश में विद्यमान आर्थिक अवस्था और सुधार के उपाय के बारे में विचार विमर्श करेगी। पार्टी सभापति एवं संसदीय दल के नेता शेरबहादुर देउवा के प्रमुख आतिथ्य में कल विचार विमर्श कार्यक्रम होगा। यह जानकारी कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय ने दी। कल शुक्रवार सुबह 11 बजे नया बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन के संकर हॉल में होने वाले कार्यक्रम में पूर्व अर्थमंत्री, राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व पदाधिकारी, निजी क्षेत्र के अर्थतंत्र से जुड़े संघ संस्थाओं के पदाधिकारी लगायत के साथ विचार विमर्श होगा। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र में बाढ़ व भूस्खलन से हुई क्षति का तथ्यांक संकलन करना शुरू किया है। बीते आश्विन में आए बाढ़ व भूस्खलन से देश भर में हुई क्षति का विवरण संकलन प्रदेश स्थित कृषि कार्यालय मार्फत सिरहा, धनुषा, महोतरी, सरलाही, रौतहट, बारा, परसा, नवलपुर, बागलुंग, खोटांग, झापा, कैलाली, लमजुंग, पर्वत, कास्की, स्यांगजा, सिंधुली, मकवान और कावरे प्लांचौक जिलों में शुरू किया गया है। ये जानकारी मंत्रालय के सूचना अधिकारी महानंद जोशी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एक साथ ही इजराइल के पूर्व रक्षा प्रमुख योब गैलेंट और हमास नेता इब्राहिम अल मसरी के खिलाफ भी वारंट जारी किया है। रॉयटर्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने नेतन्याहू, गैलेंट और इब्राहिम अल मसरी को कथित युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना है। आईसीसी के अभियुक्ता करीम खान ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर किए गए हमलों और गजा में इसराइली सैन्य प्रतिक्रिया से जुड़े कथित अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट मांग की गई है। आईसीसी ने कहा कि इसराइल द्वारा न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। इसराइल ने हेग स्थित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को खारिज कर दिया है और गजा में युद्ध अपराधों से इनकार किया है। इसराइल ने कहा है कि उसने हवाई हमले में अल मसरी, जिसे मोहम्मद डेफ के नाम से भी जाना जाता है, को मार गिराया है, लेकिन हमास ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही इसका खंडन किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी को सेना के मनार्थ महारथी का दर्जा चिन्ह प्रदान किया। जनता को सुशासन महसूस होने के हिसाब से काम करने का कर्मचारियों को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया निर्देश। सत्ता साझेदार प्रमुख दो दलों के बीच कोई विमति नहीं है, गृहमंत्री रमेश लेखक का कथन। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया वारंट। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।